144वीं गाथा की आत्मख्याति टीका आरंभ की थी, पेज नंबर 250, समय सार अनुशीलन भाग दो। केवली भगवान का उदाहरण देकर श्रुत ज्ञानी भी उसी प्रकार नए पक्षातीत हैं जिस प्रकार केवल ज्ञानी, ये बात इस गाथा में बताई गई है। नए पक्षातीत कौन है पूछा था ना, आप किसको नए पक्षातीत मानते हैं? तो केवल ज्ञानी नए पक्षातीत हैं, इसके बारे में तो किसी को शंका नहीं होनी चाहिए, और शुद्ध ज्ञानी के बारे में होती है। तो जो बात सर्वमान्य होती है उसे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और जो बात सर्वमान्य नहीं होती है उसको सिद्ध करने के लिए उसे सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ये शैली है। उदाहरण की एक बहुत बड़ी विशेषता या कमजोरी ये है कि यदि वो बात जग प्रसिद्ध ना हो, मान्य ना हो, जग माने अपर पक्ष, जो अपने प्रतिद्वंदी हैं, कि जो अपने श्रोता हैं, उनके द्वारा मान्य नहीं हो, तो उसे उदाहरण के रूप में पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह सारा झगड़ा तो उदाहरण पर ही शुरू हो जाएगा। जिसके लिए अपने दो प्रसिद्ध उदाहरण समय सार के हैं कि वैद्य लोग जहर खाते हुए नहीं मरते हैं, और शराबी शराब पीते हुए, ज्ञानी शराब पीते हुए, शराबी अरुति भाव से पिए तो शराब का नशा नहीं चढ़ता। अब इन उदाहरणों में ही इन लोगों को शंका होती है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब इससे जो सिद्धांत कहना चाहते हैं कि पर को जानते हुए वह पर में उपयोग लगा होने पर भी ज्ञानी को बंध नहीं होता, उस सिद्धांत कैसे गले उतरे? तो पहले आचार्य को हो सकता है कुंद कुंद के जमाने में ये सर्वसिद्ध उदाहरण रहे हों, लेकिन अमरचंद के जमाने आते आते उसमें शंकाएं होने लग गईं, तो उन्होंने लिख दिया कि प्रतिबंधित शक्ति से संपन्न क्या ज्ञानी, उसने मतलब इंतजाम किया हो ऐसे ही अरुचि पूर्वक दबा के रूप में सीमित मर्यादा में मद्य पीना, ऐसा उन्होंने उसका उदाहरण को बनाया। अब केवली भगवान के नए पक्ष नहीं होता है, कम से कम अमृतचंद्र समझते हैं कि ये सर्वमान्य है, उन्हें नहीं पता था कि 21वीं शताब्दी में इसमें भी लोग विवाद खड़ा करेंगे, क्यों केवली में भी नए लगा देंगे, किस नए से जानते इस नए से नहीं जानते, जबकि उनको नए रहा ही नहीं, नए तो शुद्ध ज्ञान में होते हैं, केवल ज्ञान है। फिर आचार्य ने लगा, आचार्य ने तो हमारे ज्ञान में उनको एक गेय के रूप में, उदाहरण के रूप में बनाया है, कि उन केवली भगवान का जो सौ पर को बिल्कुल एक सा ही जानते हैं, जानने में कोई अंतर नहीं है, उनका स्वा को जानना हम अपने श्रुत ज्ञान में निश्चय नहीं का बात कहेंगे, और पर को जानना व्यवहार की बात कहेंगे, हम अपने ज्ञान में ऐसा लगाएंगे, केवली में नहीं है, और हम केवली पे झगड़ा करने लग गए, माने व्यवहार से जानते हैं माने गलत जानते हैं, और गलत जानते माने केवली भगवान भी गलत जानते हैं, ऐसा अर्थ हो गया कि नहीं हो गया? तो इस गाथा में भी निष्कर्ष बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वहां तक पहुंच जाने के लिए जो विधि अपनाई गई है, जब पूरी उस प्रक्रिया को हम हल नहीं कर लें और उस विधि से उस उत्तर को नहीं निकालें, तो वो हमें कोई फायदा नहीं होगा। जैसे गणित होता है ना, और गणित को उन्होंने कहा भी हम तुम गुणा भाग करना सिखा रहे, तो उसने बता दी 100 में 4 का गुणा करो तो कितने हो गए, तो उत्तर तो 400 हमें एक सेकंड में मालूम है, क्यों? लेकिन उनको तो विधि सिखानी है, क्यों? तो वो तो कहेंगे 100 लिखो गुणित 4 लिखो, फिर 4 का क्योंकि 100 में एक साथ नहीं बोल सकते, तो 0 में तो फिर लिखो कि 0 में कुछ नहीं, अगर 0 ही आएगा फिर दूसरे 0 में किया फिर 0 आएगा, फिर ऐसे करना विधि क्रिया पूर्वक वहां पहुंचना चाहिए। क्योंकि 100 के 4 हो जाए तो आप जानते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी संख्या आएगी तो आप ऐसा नहीं जान सकेंगे। तो प्रक्रिया तो सरल संख्या से ही सीखनी पड़ेगी ना, है? तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें प्रक्रिया से वहां पहुंचना चाहिए। वो जो हम निर्णय जानते हैं उससे काम नहीं चलेगा। ऐसे जानने से कि हमारे पिताजी ने कहा था कि 100 के 4 का गुणा करो 400 होते हैं, हमने रट लिया है, फिर दादाजी आगे कहेंगे तो फिर वो बात हम उनकी मान लेंगे। तो हम अपनी प्रक्रिया से निर्णय पे पहुंचेंगे तो कोई भी दादाजी के दादाजी भी आ जाए ना तो भी हम कहेंगे साहब ऐसा नहीं होगा, ये करके बताओ, हमें तो देख के बताओ। देखो जिस प्रकार केवली भगवान विश्व के साक्षीपन के कारण, माने विश्व के वो सिर्फ साक्षी माने गवाह, साक्षी का समझते हैं ज्ञाता दृष्टा, जो अदालत में साक्षी के रूप में जाते हैं ना गवाह के रूप में, उस गवाह के आधार पर किसी को फांसी लग जाती है और किसी की फांसी छूट जाती है। लेकिन जिसके जिसके आदमी को मारा गया है वो उसकी गवाही नहीं लगती, क्योंकि तुम्हारा तो पक्ष है। मैंने वो गवाह का निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है, यद्यपि इस लोक में निष्पक्ष गवाह मिलना भी उतना ही दुर्लभ है, क्यों? लेकिन कानून क्या करे, रिश्तेदारी हो, कहीं से कोई संबंध हो, कोई लेन देन हो, ऐसा कुछ सिद्ध हो जाए तो हम उसे गवाह में हटा सकते हैं, और नहीं सिद्ध हो तो गवाह को प्रमाणिक मानना पड़ता है। फिर वकील बेचारे क्या करते हैं, गवाह के आधार पर ही होना है निर्णय, तो उस गवाह को ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि ये झूठा है। तो सारी बहस गवाह से जो सामने वाला वकील करता है वो ये कर देवे किसी तरीके से कि ये आदमी प्रमाणिक नहीं है, तो वह खलास हो जाती है बात, क्या? अब ये कहते थे विश्व के साक्षीपन के कारण, साक्षी उसे कहते हैं जानता सब कुछ है और पक्षपात बिल्कुल नहीं है, क्या? श्रुत ज्ञान के अवयव भूत व्यवहार निश्चय ने के पक्षों के स्वरूप को, श्रुत ज्ञान के अवयव हैं, अवयव माने हिस्से हैं, व्यवहार नये निश्चय नये स्वरूप को मात्र जानते ही हैं। अब यहां जानने का निषेध नहीं है ना, अब जानने ही क्यों लगाई? इसके लिए लगाई कि उनमें राग द्वेष नहीं है उनके प्रति, परंतु सतत उल्लसित सहज विमल सकल केवल ज्ञान के द्वारा, निरंतर केवल ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान में उत्पन्न हो रही है, उसका नाम उल्लसित, यानी उसे आलस नहीं आ रहा है। अदालत में जाके गवाही देवे इन्होंने कहा तो था तो इसको करके लाओ, नशा किया हो तो होश में आ जाए जब लाना, नहीं तो मुंह धुला के लाओ, क्या उल्लसित उल्लास पूर्वक मतलब एकदम सक्रियता होनी चाहिए उसमें। तो सहज विमल सकल केवल ज्ञान, सहज है निर्मल है और सबको जानने वाला है, ऐसा केवल ज्ञान के द्वारा स्वयमेव विज्ञान घन स्वभावी होने से, भगवान आत्मा तो विज्ञान घन स्वभावी है, शुद्ध ज्ञान की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा कि शुद्ध ज्ञान की भूमिका से वो पार हो गया है, अर्थात शुद्ध ज्ञान की भूमिका को पार कर चुकने के कारण समस्त नए पक्ष के परिग्रहण से दूर हुए होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता। अब ये तो उदाहरण है, अब सिद्धांत घटित करो, अब बाकी बातें तो वो भी सिद्ध करेंगे कहां गड़बड़ है। उसी प्रकार जो श्रुत ज्ञानी आत्मा तत्संबंधी क्षयोपशम से उत्पन्न श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होने पर भी, अब यहां क्या लिखा था, परंतु जिस प्रकार केवली भगवान साक्षात साक्षी पने के कारण श्रुत ज्ञान के अवभूत निवहार व्यवहार पक्षों के स्वरूप को जानते ही हैं, पर क्योंकि उन्हें कोई पर को मतलब उनमें उत्सुकता नहीं है। अब यहां कहते पर भी श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होते, केवली में तो विकल्प उत्पन्न नहीं होता ना, तो निर्विकल्प जानते हैं और ये विकल्प जानता है, ये अंतर आ गया। तो हम उदाहरण कैसे दे सकते हैं, उदाहरण दोनों एक सा होनी चाहिए ना। अपन ने पश्चाताप में कहा कि सीता से यदि धोबिन की उपमा देनी है तो धोबिन अपनी मर्जी से दूसरे के घर में रह के आई थी ये नहीं माना जा सकता, क्योंकि सीता को तो जबरदस्ती ले जाया गया था, तो हमें धोबिन के उदाहरण में भी ये मानना पड़ेगा कि उसे जबरदस्ती ले जाया गया था। तब तो वो उदाहरण साम्य होगा ना, नहीं तब नहीं होगा। अब भी कहते तो अलग ही बात है, उसे तो वो जबरदस्ती ले गए थे, ये तो मर्जी से गई थी, तो फिर तो वो कानून लागू नहीं होगा ना, क्यों वैसे ही उदाहरण मानना पड़ेगा क्या नहीं। तो आप कहते हैं कि इनको तो विकल्प उत्पन्न हो रहा है और उनको तो होता नहीं था। श्रुत ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होने पर भी, वहां ने कहा था विज्ञान स्वभावी होने से पर के ग्रहण करने के प्रति उत्सुकता से निर्वृत्त होने से, ये बहुत मार्मिक पंक्ति है इतनी, उत्सुकता से निर्वृत्त होने से। सम्यक दृष्टि अपने भगवान आत्मा को जानने के लिए उत्सुक है और पर को जानने के लिए उत्सुक नहीं है। और ये उत्सुकता भी सिर्फ श्रद्धा संबंधी लेना, राग संबंधी उत्सुकता तो हो सकती है। यदि एकदम आए समाचार कि फला आदमी का, बहुत बड़े आदमी का स्वर्गवास हो गया है, तो सम्य ऋषि को उत्सुकता नहीं होगी। आप कहोगे तो काय में आया, काय में आया, कि मैं कह रहा हूं ना कि नहीं, बड़ा अखबार कहां है, और अखबार को पूरा पूरा तीन तीन दफे पढ़ता है, क्यों? तो उससे उत्सुकता तो है ना, तो ऐसी उत्सुकता का निषेध नहीं है, ये तो चारित्र में संबंधी है। अब एक जरा भूल हो गई तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या जानने का निषेध नहीं है और जानने की श्रद्धा में उत्सुकता होने का निषेध है। अब हम इस अंतर को नहीं समझ पाते हैं। अब अपन कहते उत्सुकता से निर्वृत्त हुआ होने से, अब सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला है, तो चार से जो उत्सुकता होती है विकृति से, वो तो उसके खत्म हो ही नहीं सकती ना, पर श्रद्धा वाली लेनी पड़ेगी क्या ना, कि ये जो बारीक बिंदु है हम वहां पर चूक जाते हैं। श्रुत ज्ञान के अवभूत व्यवहार निश्चय पक्षों के स्वरूप को केवल जानता ही है। अब केवल नहीं जानता तो नहीं लिखा ना, जानता ही है। अब उसको आगे कुछ नहीं है, उत्सुकता नहीं है, तो जानने में आ गया तो जान लिया, गुरुदेव जाने लो प्रयोजन मान से, बस जानने में आ गया तो ना, इंकार भी नहीं है। जैसे कोई आदमी कहता है कि भैया हमारे साथ उन्होंने बहुत अन्याय किया है, कि देखो भाई साहब हमको उस बारे में कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं कहना है, हम उलझना नहीं चाहते, ये तो घर घर की लड़ाइयां हैं, अपने घर में निपटो। तो अगर जान तो लो, मेरी सुन तो लो, कम से कम कोई सुनता ही नहीं है, अच्छा सुना दो क्या? लेकिन इतना नक्की कर लेना कि बस मैं सुन लूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ भी एक सेकंड भी उसमें कुछ विकल्प नहीं करूंगा, सोचूंगा नहीं, दिमाग नहीं लगाऊंगा, बुद्धि नहीं लगाऊंगा, बोलूंगा नहीं। बोल सब सुनाना क्या नहीं, कि एक जगह सुन तो लो, तो बीत राग भाव से सुन लेते हैं, ऐसा नहीं कि सुनी अनसुनी, ऐसा नहीं, बराबर उपयोग तो लगाते हैं, कहने का मतलब ये पर के जानने में ऐसा है। तो मैंने सीखा कि देख भाई सच्ची बात है कि हम कुछ नहीं कर सकते पर में, कि तुम जान तो लो, कि सुना जमा ले जान ले। और जब जान लिया अंत में कि मैंने कह दिया था ना पहले कुछ नहीं करूंगा, नहीं नहीं नहीं, तो आपने जान तो लिया ना, क्या जान लिया, कि क्या जान लिया, कि तुम मैं आपस में बहुत झगड़ा है, कैसा है तो उसे भी होगी अनुमान करता हूं मैं, लेकिन तुम में पक्की है इतना मैंने जान लिया है। क्यों? क्योंकि असलियत तो मैं तुम्हें जाना है ना, मैंने तुम्हें सुना है, उसे थोड़ी सुना है। वो कैसा आदमी है ये तो उसे जानूंगा तब मैं मानूंगा। तुमने ये कह दिया कि वो महानालायक है तो उसे मैं महानालायक नहीं मान लूंगा। ये कोई केवली की बात नहीं है, हर आदमी का यही है। क्यों भैया? हाँ साहब, उन्हें सुन ली बात, मैंने सुन ली साहब। क्या हुआ? अरे क्या बताए साहब, ये तो आग है, आग है। गाली के सिवाय तो हमें बोलते ही नहीं है। जब मैं उन परोक्ष में मेरे सामने इतनी बकरे थे तो सामने क्या हुआ होगा इसका अनुमान मैं कर सकता हूं। तो अब क्या करना है? क्या करना? जान लिया ना क्या करना? जान लिया ना। अपन को क्या करना? अपने पास काम कम है क्या? देखो बहुत मर्म की बात कहता हूं, हम किसी दूसरे के बारे में जितना विकल्प को लंबाते हैं उतना अपने काम में पिछड़ जाते हैं। अपने स्वाध्याय में, तर्क समझने में, लिखने में, बोलने में, हमारी ड्यूटी है ना जो, क्यों? इसलिए कि फिर इससे तो बढ़िया वही रास्ता है ना, सुने ही नहीं, जाने नहीं। कि जानना तो स्वभाव है भाई साहब, स्वभाव का निषेध कैसे कर सकते हैं? जानना तो स्वभाव है, हम स्वभाव का निषेध कैसे कर सकते हैं? क्यों? जब केवल जानता ही है, उत्सुकता नहीं है ना, परंतु अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किए हुए निश्चित नित्य उदित चिन्मय समय से प्रतिबद्धता के द्वारा चैतन्य आत्मा के अनुभव द्वारा अनुभव के समय स्वयं विज्ञान घन होने से श्रुत ज्ञानात्मक समस्त अंतर जल्प रूप और बहिर्जल्प रूप विकल्पों की भूमिका की अतिक्रांतता द्वारा समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हुआ होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता हुआ हो वह श्रुत ज्ञानी भी आत्मा भी वस्तुतः समस्त विकल्पों से अति पर परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यक्ष ज्योति आत्मख्याति रूप अनुभूति मात्र समय सार है। क्या अंतर आया? उत्सुकता का अभाव है पर में और स्वयं में पूरी उत्सुकता है। क्या लिखा? चिन्मय समय से प्रतिबद्धता के द्वारा। अब ऊपर से ले लो, अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किए हुए, यहां कौन? आत्मा को। वहां अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि नहीं लगाई थी, सामान्य सहज भाषा जान लिया था। निस्तुष नित्य उदित चिन्मय समय से प्रतिबद्धता के द्वारा, माने ये आत्मा के संदर्भ में ये फर्क है। पर के संदर्भ में देखो, अपने विचार करो, आत्मा रागादि का कर्ता है कि नहीं है ये जानने में हमको जितने उत्सुक होना चाहिए। अब सुमेरु पर्वत की लंबाई कितनी है, और जमीन के अंदर कितना है, ऊपर कितना है, और उसमें जो सोना है वो 100 टन का है कि 99 टन का है, इनमें मतभेद हो जाए क्यों? तो इसमें समय और शक्ति खर्च करना और जान ठोक के खड़े हो जाना ये समझदारी का काम है, कि जान लिया ना, आगे बढ़ो। कि क्या जान लिया तुमने? कि तुम ऐसा कहते हो कि इतना है, जे ऐसा कहते हो कि इतना है, जान लिया, ये जान लिया। और क्या जान? कि तुमने हम आचार्यों के प्रमाण दे रहे तो हमने जान लिया, तुम दे रहे फलाने आचार्य का, तुम फलाने का दे रहे, वो जान लिया। तो तुम्हें कोई डिसीजन करना है कि हमें क्या करना हो, हमें जमीन थोड़ी खरीद क्यों? लेकिन उलझने वाले तो कहीं भी उलझ सकते हैं, यहां आएंगे हॉल देखेंगे 100 फीट लंबा तो होगा, अरे 100 कहां, 100 इतना होता है, 100 तुमने कभी देखा नहीं है तुम्हारे बाप ने, कहते बाप तक मत जा, 80 से ज्यादा नहीं है, अरे मैं तो 125 लग रहा था मेरे को, तुम्हें तो 100 तो कहा है, अब झगड़ा है क्यों, अरे भैया नाप लो ना, क्यों, ज्ञानी कहता है मुझे क्या करना है, 80 सही चाहे 100 सही चाहे 125 सही, मुझे इतनी उत्सुकता नहीं है, नापा जा सकता है, उस निर्णय पे पहुंचा जा सकता है, फिर ये कहोगे इसने गलत बोला था सजा दो, कौन सही निकला, कोई गलत दो, सही वाले को पुरस्कार दो, लेकिन मुझे उसमें कोई रसई नहीं है, कोई उत्सुकता ही नहीं है, तो जाने ही क्यों, तो तुमने बोला ही क्यों कि 100 फुट है, अरे भाई जाना, अब विकल्प ऐसा आया कि 100 फुट होगा, मैं तो निकल गया, मैं क्या करूं, मुझे कोई रस नहीं है ऐसे 100 फुट सिद्ध करने में, समझिए लेकिन लिखा है क्या वहां उत्सुकता नहीं होने से, अब ये सारी मेहनत क्यों कर रहे हैं, केवल ज्ञानी में तो 3 लेन में निपटा दिया था और शुद्ध ज्ञानी में 9 लेन लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसको तो उत्सुकता नहीं है और जानने में वो बात सिद्ध करने में इतनी मेहनत नहीं है, मान्य है, अब तो ये बता रहे कि शुद्ध ज्ञानी को ऐसे हो सकता है क्या, देखो एक जो राग द्वेष की तीव्र वृत्ति वाला जीव है, काम वासनाओं की उत्तेजना से भरा हुआ जीव है, तो उसको ये समझ में आ ही नहीं सकता है कि आपने उस महिला को देखा है, देखा है, जानते हो क्या, जानते हो वो कैसी है, ये तो नहीं कह सकता, अपने ऐसा कई दफे होता क्या नहीं होता है, लड़कियों के मामले, लड़की क्या आपने लड़की देखी, हमें रहते तो आपकी पड़ोस में, क्यों नहीं देखी, देखी होगी लेकिन अब कैसी है, अब इस दृष्टि से नहीं देखा, वो एक दृष्टि अलग होती है कि नहीं होती है, सामान्य ज्ञान का गेम बने, मैं 5 साल तक आप लोगों को मैंने देखा कि नहीं देखा बोलो, रोजीना सामने बैठे रहते हैं सब लोग कहते हैं, मैं यहां जाकर अभी वो बबलू से पूछूंगा कि बबलू बहुत से देखा नहीं यार, अभी तो प्रजन में बैठा था, अच्छा अच्छा बैठा था, ऐसा क्यों होता है, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि है आपकी तो, लेकिन इतनी सी बात याद क्यों नहीं रहती है, अरे भाई मुझे सिर्फ अवग्रह होता है आपका, या नहीं होता, अब आया धारणा तो बहुत बाद की बात है, कोई भी तुम में से एक भी आदमी मुझे रेल के डब्बे में मिलेगा तो मैं नहीं पहचान सकता हूं कि तुम मेरे विद्यालय में पढ़े हुए विद्यार्थी हो, नाम माम तो बहुत दूर की बात है, लेकिन तुम कभी रहे हो पढ़े हो ये भी बहुत मुश्किल है मेरे लिए सफलता, और ऐसा नहीं कि बुद्धिपूर्वक मैंने कुछ ऐसा किया है, लेकिन मैं बुद्धिपूर्वक कोशिश भी करूं तो मैं नहीं रख सकता याद, क्योंकि ज्ञान का श्रेष्ठ भी उस प्रकार का है कि वो गाथा याद रहेगी, विषय याद रहेगा, पर तुम्हारा नाम याद रहने वाला नहीं। अभी तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बंबई में गया था परीक्षण में, तो 20 दिन जिस घर में रहा, जिस बहन ने रोजाना मुझे नाश्ता भोजन अपने हाथ से बना बना कर बगल में खड़े रहकर मना मना कर खिलाया, सारी व्यवस्था की 20 दिन लगातार, जब मैं इस साल गया तो दूसरी जगह ठहरा था, वो प्रचन सुनने आकर के बोला दादा ये कौन, कि पहचाना नहीं, ख्याल में नहीं आ रहा, अरे 20 दिन तक सेवा करके मर गई। मुझे भी बहुत दुख हुआ कि नहीं ये तो अति हो गई है? लेकिन हो गई, मैं क्या करूं, मैं न तो उसे याद रखने की कोशिश की और न भूलने की कोशिश की, अब मैं अभी सोच रहा हूं तो अभी भी लग रहा है कि वो कहीं मिल जाएगी तो मैं पहचान पाऊंगा कि नहीं। इस उदाहरण से सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूं कि उत्सुकता का अभाव क्या है ऐसा विशेष जानने लायक, तो जानते ही क्यों, अरे तो स्वभाव है, जानने में आ जाता है तो आ जाता है, मैं क्या करूं, है? जो आदमी बहुत ही गंदे संपर्क में आ जाता है या जिससे अच्छा जम के झगड़ा हो जाता है कि जम के कुछ ज्यादा हो जाता तो वो थोड़ा कभी कभी धारणा में रहता है और फिर उसको याद रहता है वो है ना। देखो क्या रहा फिर चिन्मय समय आने आत्मा से प्रतिबद्धता के द्वारा ये है। बस हम तो आत्मा से प्रतिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध समझ गए ना कि हमारी प्रतिबद्धता काय से है, है? कि हम तो निरपेक्ष वाले आदमी हैं, जाति बाद हमारे माथे में नहीं है, तो हमारी प्रतिबद्धता काय से है। अभी तो 5 जातियां पड़ी थी 10 वर्ष की उम्र में, उसके अलावा 6वीं जाति आज तक हमें कहीं में देखी नहीं। कौन सी थी 5 जातियां मालूम? कल ही बोला था ना शांति जी ने परसों, हाँ, 1 इंद्री जाति, 2 इंद्री जाति, 3 इंद्री जाति, 4 इंद्री जाति और 5 इंद्री जाति। तो 5 ये सारे देव, सारे नारकी, सारे सैनी पंचेंद्री और सैनी पंचेंद्री त्रंत अपनी जाति की तो है। महासाज तत्वा सूत्र में लिखी है जो देखो मैं सीता में सबको मान्य है। बताओ और कोई जाति लिखी हो तो बताओ है? इन 5 जातियों को जानते हैं हम, खत्म। इसके अलावा कोई जाति, हमारी प्रतिबद्धता इन 5 जातियों से है, बाकी सब हमारे साधन भी हैं। उसमें क्या है इस बात को मानते हो तो ऐसे ये बात्सल्य शब्द बार बार आता है, अपन प्रेम राग भाग मेरे मुंह से बात्सल्य ही निकलेगा। किसी से महाराज मुनिराज विद्यानंदी से बात होती है, सब आपका बात्सल्य बहुत है, बात्सल्य भाव ही में बोलते शब्द निकलता है। तो बात्सल्य भाव में वो जो परम पवित्रता है वो ये प्रेम में राग भाग में है ही नहीं। क्या इनमें तो विषय कसा है कि कितनी कितनी बातें जुड़ी हैं। वो बात्सल्य भाव वो श्रद्धा वाली बात है, क्योंकि बात्सल अंग है ना, तो वो किसका है? सम्यक दर्शन का है ना, तो सम्यक दर्शन के अंग में सम्यक दर्शन वाला ही बात्सल्य लेना चाहिए। क्या कि गले से चिमड़ जाना, फिर करना, ये क्या? ये तो जड़ की क्रिया है। राग करना ये भी राग की क्रिया है। अंदर में दर्शन ज्ञान चरित्र और दर्शन ज्ञान चरित्र वाले, इनके प्रति अंतर में अब मैं प्रेम तो कहना नहीं चाहता हूं, तो बात्सल्य होना समझ गए ना आप। जो अंदर में चित्त का उत्साह है उसका नाम बात्सल्य भाव है। प्रतिबद्धता था ना, मैंने कहा प्रतिबद्धता पढ़ रहे थे। चिन्मय समय के प्रति प्रतिबद्धता के द्वारा अर्थात चैतन्य आत्मा के अनुभव द्वारा अनुभव के समय स्वयं विज्ञान घन होने से श्रुत ज्ञानात्मक समस्त अंतर जल्प रूप और बहिर्जल्प रूप विकल्पों की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हुआ होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता हुआ वह श्रुत ज्ञानी आत्मा भी केवल ज्ञानी तो था, ये भी कहा बता रहा केवल ज्ञानी के समान वस्तुतः समस्त विकल्पों से अति पर भिन्न परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यक्ष ज्योति आत्मख्याति, आत्मख्याति भगवान आत्मा का नाम है, आत्मख्याति रूप अनुभूति मात्र समय सार है, इसका नाम समय सार है। ये वो कहा था इसमें आत्मख्याति प्रत्यक्ष ज्योति अनुभूति त्रिकाली ध्रुव के लिए सब शब्दों का प्रयोग है। टीका का संक्षेप सार प्रस्तुत करते हुए जयचंद जी छाड़ा भावार्थ में लिखते हैं। बात तो यहां सब स्पष्ट हो जाती है सिर्फ इस बात के लिए कि जयचंद जी ने भी यही अर्थ निकाला था कहीं मेरे है ना। क्या करते हैं लोग कि जबरदस्ती हमको जयचंद जी के विरुद्ध खड़ा करेंगे कि टोटम जी के विरुद्ध खड़ा करेंगे, उनने ऐसा कहा, इनने ऐसा कहा, तो ये हम किसी के विरुद्ध, उन ज्ञानी धर्मात्माओं के कि जिनको पढ़ पढ़कर हमको ये बात समझ में आई है, उनके विरुद्ध होने का क्या सवाल है क्या? किसी के भी, कुंद कुंद से लेकर के कांजी स्वामी तक और भी जो हों, उन तक किसी के विरोधी होने का क्या सवाल है? अरे उनसे तो कुछ ना कुछ मिला ही है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उनको बिक गए। बिक गए का मतलब कभी जो बात हमारी उनकी बात ख्याल में नहीं आएगी तो भी हम फिर क्यों, अब हमारे हाथ में है क्या? हम नहीं जम रही तो नहीं जम रही कि नहीं साहब कि मत बोलो तो हम बोलने पर प्रतिबंध कर दो, नहीं बोलेंगे कि मत सो तो क्यों तो नहीं सोचेंगे। लेकिन जो वो ज्ञान में नहीं बैठ रही है तो नहीं बैठ रही, क्या करें? वो तो ज्ञान में बैठ जाएगी तो बैठ जाएगी, नहीं बैठेगी तो नहीं बैठेगी। वो हमारे हाथ में है ही नहीं ना, क्यों? इसलिए जब हमसे कोई कहता है कि साहब आप उनको नहीं मानते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसा नहीं करते, मैं कहता हूं हमने आज तक एक शब्द किसी के विरुद्ध बोला नहीं है। हमारी तो प्रतिज्ञा है कि हम शत्रु के बारे में भी एक शब्द नहीं कहेंगे। ये नहीं कहें, आप ये तो नहीं कहते ठीक है, इसमें हम क्या कहें? और सुने ना, हम झगड़ा तो इस बात का होता है कि हम तुम्हारा विरोध करें, हम आपका विरोध नहीं करते हैं, फिर झगड़ा किस बात का? बोलिए। मेरे पास एक प्रस्ताव आया था बहुत, कि जैसे आप विद्यानंद जी के पास गए और तत्सम आपने किया, ऐसे फलां के पास भी चलो और उनसे भी ऐसी सब चर्चा करो, ऐसा करो सब हो। मैंने कहा जरूर चलेंगे, हमें कोई किसी से राग द्वेष नहीं है, लेकिन एक बात नक्की करके आओ। क्या? कि एक घंटा हम बोलेंगे तब वे बिल्कुल चुप रहेंगे, सुनेंगे पूरा, हमें बीच में नहीं टोकेंगे। फिर वो एक घंटा बोलें, जो भी उन्हें विरोध करना हो, गालियां देना हो, जो भी करना हो बोलें, ताकि उस तत्व का प्रतिपादन करना हो, हम एक घंटा बिल्कुल शांति से उपयोग लगाकर सुनेंगे, इस लेवल से कि वो पूरा भाषण हम दोहरा दें। और फिर जब दोबारा एक घंटा हम बोलेंगे तो उनकी एक बात को काटेंगे नहीं, सुनना, उन्हें पूरी काटने की छूट है। क्या? हम एक बात नहीं काटेंगे, और जो विषय हमने जहां कल छोड़ा है उससे आगे जो हमें बोलना है वो बोलेंगे। बबलू समझ में आई बात करी? फिर दूसरे दिन में खूब हमारी धुनाई करें और हम सुनेंगे शांति से, और तीसरे दिन फिर अपने पॉइंट से आगे बोलेंगे। क्या? ये लयाव पक्का करके हम चलेंगे, हम झगड़ने के लिए नहीं जाना चाहते, हम बहस करने के लिए नहीं जाना चाहते। वे अपनी बता दे, हम अपनी बता देंगे, फिर उनकी समझ में आ, मान लें हमारी ना मान लें। आप यदि वो विद्यानंद जी के साथ जो हुआ है ना 14 घंटा, वो भी एक आधा बहने सुनाओ, तो उसमें क्या बात है कि हमने ना एक विषय ले लिया, जो कहा था उनने बताई, वो फिर हम बोलते रहे, फिर बीच में वो बोले, कृष्ण किया, जो भी बोला, एक दिया और अपना कमेंट्स किया, हम शांति से सुनते रहे। तब उन्हें बंद हो गए कि बोला था, तब हम बोलना शुरू किया, तो जिस जहां अब पे छोड़ा था, आप छोड़ा था तो बा, तो अब से ही शुरू करके बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तब तो हम पूरा समय था 14 घंटे में सुना पाए उन्हें, यदि जो उन्हें कहा उसमें हम उलझ जाते, जो बात पूछी तो एक आध थोड़ा दो लाइन में जवाब दे दिया, लेकिन फिर अपनी पंक्ति को आगे बढ़ते गए। क्या पर ये है हमारा, क्यों तो हमको और ज्यादा समय नहीं है, हमें किसी से बैर विरोध नहीं है, किसी से ये नहीं है। जो तुम उनके पास क्यों जाते हो तो हम ये कहते हैं कि उनने क्या पाप किया है, तुम्हें तो सुनाए और उन्हें नहीं सुनाए, ये कहां से लाए? क्यों सुनाओ वो तो ठीक, सुनते क्यों हो? सुने कि ना सुनेंगे एक घंटा तो तुम्हारी तो सुनते हैं, उनकी नहीं सुने। कहां शांतिलाल जी, बोलो क्या है इसमें, क्या खराबी है इस नीति में, बोलो जब भी यह समाज में आए मामला झगड़ा होता, महासमिति में बैठे, फलाने जगह बैठे, साहू जी से शांति प्रसाद जी से लेकर अभी तक वे बोलते कि साहब आपका मुनियों के साथ क्या झगड़ा, कोई झगड़ा नहीं है, हमने तो किसी के विरुद्ध आज तक एक शब्द बोला नहीं है और कभी बोलेंगे नहीं, आपको गारंटी दे सकते हैं, झगड़ा काहे का है। नहीं नहीं आप मानते नहीं हो, दो झगड़ा तो विरोध करने का होता है ना, झगड़ा क्यों कहते हो फिर, मानते हम बहुतों की नहीं, शंकराचार्य की नहीं मानते, मध्वाचार्य की नहीं मानते, रामानंदाचार्य की नहीं मानते, ईसा मसीह की नहीं मानते, किसी की नहीं मानते, इससे क्या मतलब है, फिर जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे इस देश में सब लोगों के बीच में, हमें जिंदा रहने का अधिकार है। आप हमें नहीं झगड़ने का उपदेश दे सकते हैं, वो हम पहले ही मान लिया है, और तत्व समझाना चाहते हो तो समझ के आओ, और हम तो ये निर्णय तो हम करेंगे कि हमें किससे समझना है, क्या समझना है, समझ का निर्णय भी आप हमारे हाथ से छीनना चाहते हो क्यों, एक ही जगह तो आजादी है, कौन सी जगह बोलो, मान्यता में, बोलने में नहीं है, बोले तो झगड़ा खड़ा होता है, कुछ करने में नहीं है, लिखने में नहीं है, क्यों, कहां है आजादी, एक मानने में ही, श्रद्धा गुण में ही तो आजादी है, और तुम वो भी छीनना चाहते हो, ये नहीं चलेगा। आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये मत पूछो, समाज में झगड़ा हो ऐसा क्या किया वो बताओ, क्यों, पंचायत उस पर बैठ सकती है, तुम पहले ही सरेंद्र में हमें कुछ नहीं करना है, मैं खत्म। देखो अभी जयचंद छाबड़ा को पढ़ लेते हैं शांति से, जैसे केवली भगवान सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी हैं, देखो उसी प्रकार श्रुति ज्ञानी भी जब समस्त नयों पक्षों से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र भाव का अनुभव करते हैं तब वे नए पक्ष के स्वरूप के ज्ञाता ही हैं। वो ज्ञाता का पद वहां भी निषेध नहीं किया, केवली भगवान यदि नहीं जानते होते तो अनुभव के काल में ज्ञान नहीं, इसके ज्ञाता है ये, पर्याय में यहां पर्याय नहीं, लब्धि पर्याय नहीं, वे उसको जानते नहीं है, उनको उसका ज्ञान नहीं है, है? यदि वो जो दूसरा मुद्दा है कौन सा, कि जब वो बाहर उपयोग है तब वे नए पक्षातीत हैं या नहीं है, वो उस पर ध्यान देना, यहां तो किसी को झगड़ा ही नहीं है। यदि एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है, आप समझे ना, ये मैंने मिथ्या दृष्टि की तो पोजीशन ही है। अब दूसरा देखो सम्य दृष्टि का, प्रयोजन बस एक नए को प्रधान करके उसका ग्रहण करे तो मिथ्यात्व के अतिरिक्त मात्र चारित्र मोह का राग रहता है ना, और दो बातें हो गई, और तीसरी, और जब नए पक्ष को छोड़कर वस्तु स्वरूप को मात्र जानते ही हैं, नहीं जानने का निषेध यहां भी नहीं है, है ना, तब उस समय श्रुति ज्ञानी भी केवली की भांति वीतराग जैसे ही होते हैं ऐसा जानना। एक मिथ्यात्सहित राग, एक अकेला राग और एक वीतराग। अब इस समय भी शुद्धोपयोग के काल में अभी दसवें गुण स्थान से पार तो नहीं हुए ना, तो वो राग देश तो विद्यमान है ही कि नहीं है, फिर भी उन्होंने पूर्ण वीतराग कह दिया, क्योंकि तो श्रद्धा की अपेक्षा पकड़ रहे हैं, कह दिया पूर्ण वीतराग कह दिया, उस राग की हमने गिना ही नहीं, राग बस उसको गिना ही नहीं, इतना आपको समझना पड़ेगा। अब इसी बात में केवली और श्रुति केवली की तुलना हो सकती है, तुलना में जो फर्क है वो भी बता दिया, जो अंतर नहीं है वो भी बता दिया। हम तो ये कह रहे हैं कि जैसे केवली पक्षातीत हैं, ऐसे ही नए पक्षातीत श्रुति ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव भी हैं। इतना ही कहना है। उक्त संपूर्ण विषय वस्तु को स्वामी जी ने बहुत बढ़िया ढंग से स्पष्ट किया है, अतः अपनी ओर से कुछ भी टिप्पणी किए बिना उनके स्पष्टीकरण को उद्धृत कर देना ही पर्याप्त लगता है। मैंने ये सब विवाद के विषय थे पर बबलू सब ये सब तो ये सामने बहुत सारे मर में निकाल के यहां रख दिए। अब इससे तो हिलता हिल नहीं सकते, या तो पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ते हैं तो मान नहीं सकते। हम अपनी तरफ से क्या कह रहे हैं बोलो। वहां अमरचंद को लिखा, अपने जयचंद जी को लिखा, और कांजी स्वामी को देख लो। अब देख लो ये तीनों सभी ज्ञानी एक मत हैं, हम तो इस मत के हैं। अब तुम्हें क्या कहना है तुम बोलो क्यों। अब गुरुदेव का है, पढ़ रहे हैं अपन, बहुत लंबा है, घबराना नहीं, क्योंकि उसकी व्याख्या करने की अपन को जरूरत नहीं है ना, ढाई पेज से है, ढाई पेज करीब है। टीकाकार आचार्य अमरचंद देव केवली भगवान का दृष्टांत देकर समझाते हैं। जिस प्रकार के जब पॉइंट है बराबर एक दो तीन, जिस प्रकार केवली भगवान विश्व के साक्षी होने से अन्य समस्त लोकालोक के साथ शुद्ध ज्ञान के अवभूत व्यवहार और निश्चय नय के भेदों को भी मात्र साक्षी पने से जानते ही हैं। देखो समस्त लोकालोक के साथ, अब जो निश्चय से जानते व्यवहार से जानते तो नहीं कहा ना कोई, इतना हाथ पे रखे हुए आंवले जैसा महासत्य कि भाई पर को जानते हैं एक जीव दूसरे जीव को जानता कि नहीं जानता है जीव, अब उसमें ही हमने विवाद खड़ा कर दिया। आज जगत में ऐसे भी लोग हैं कि उसमें भी दो ही पक्ष में लोग हो गए। हजारों प्रमाण है, हजारों प्रमाण है। हुआ है, हमने भोगा है ना। उसी प्रकार श्रुति ज्ञानी भी श्रुति ज्ञानात्मक विकल्पमय होते हुए भी पर के ग्रहण के प्रति उत्साह निर्वृत्त होने से श्रुति ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय नय के पक्षों के स्वरूप को मात्र जानते ही हैं। कितनी सही भाषा है, और गुरुदेव का कोटेशन है। तो हमने जो गुरुदेव के प्रजन रत्नाकर लिखे जिनमें से हमने कोटेशन दिए हैं, उनका संपादन हमने किया, दादा ने अनुवाद किया, और उसके लिए हम लड़े हैं, सबको चैलेंज किया कि ये उसमें है तुम्हारे गुजराती में कि नहीं, जो हमने ये लिखा है ये बात है कि नहीं, इसके अलावा क्या है वो बताओ। मक्खी की मक्खी तो हम मान नहीं सकते हैं क्या। तो कितना बड़ा काम था वो, ये तो समझो लंबी जिंदगी थी, भाग्य से तो हो गया। 10,000 पेज क्या बोलते हैं, 10,000 पेज अनुवाद किया, उसे बार बार लिखा पढ़ा, फिर जब ये लिखा तो उसके लिए उसे पढ़ा, अब गुरुदेव को इतना सुना पढ़ा, अब ये कुछ दिया ही नहीं कागज, एक ना आधी नींद में आते जाते लेते लेते गुरुदेव का टेप लगा लेते हैं और सुन लेते हैं, ख्याल में आई ना, और बस भी समझते हैं कि हमने हमने बहुत, हम तो रोज ही ना 2 घंटा सुनते हैं, हम तो रोज ही ना 4 घंटा सुनते हैं। क्या क्या है, और वो तो सब उस समय छपे थे गुरुदेव जिंदा थे, और जानते हैं एक गलती निकाल करके गुरुदेव के सामने प्रस्तुत की जाए तो वो जानते हैं गुरुदेव के दिमाग में से उतर सकते हैं, और गुरुदेव की जबान में एक शब्द आ जाए तो सारे देश की निगाह से उतर सकते हैं। ऐसी 32 दांतों के बीच में जबान ने रह करके काम किया है, तो उससे हम इतने पक्के हो गए, हमें तो लाभ ही हुआ, नुकसान नहीं हुआ। बोलू इस साल मैंने 450 पेज लिखे, हमेशा 200-250 पेज का एवरेज रहता था, पर इतना घूमा हूं क्या। आज समय सार अनुशीलन भाग का दूसरा भाग दूसरा भाग रात को 12 बजे पूरा हो गया, अब वो 8-10 दिन के अंदर आपके हाथ में आ जाएगा। और मैं यहां 1 तारीख तक मेरा सुबह यहां प्रवचन होगा, 1 तारीख के दोपहर में मैं जाऊंगा, आज को आऊंगा, तो मैं बिल्कुल प्रिंट ऑर्डर देके फाइनल जाऊंगा और मैं आज को मुझे मिलना चाहिए तैयारी, ऑर्डर देके जाऊंगा। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता, क्योंकि बीच में दिवाली भी है, खाली मिलेगा कि नहीं। हाँ, अब गुरुदेव को पढ़ते हैं शांति से। जिस प्रकार केवली भगवान विश्व के साक्षी होने से अन्य समस्त लोकालोक के साथ श्रुत ज्ञान के अवयव भूत व्यवहार और निश्चय के भेदों को भी मात्र साक्षी पने से जानते ही हैं, उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी श्रुत ज्ञानात्मक विकल्पमय होते हुए भी पर के ग्रहण के प्रति उत्साह निवृत्त होने से श्रुत ज्ञान के अवयव भूत व्यवहार निश्चय के पक्षों के स्वरूप को मात्र जानते ही हैं। केवली के समान श्रुत केवली, जिस प्रकार केवली भगवान निरंतर प्रकाशमान सहज विमल सकल केवल ज्ञान से सदा स्वयं के विज्ञान घन होने से श्रुत ज्ञान की भूमिका से अतिक्रांत हैं, उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण करते हुए निर्मल नित्य उदित चैतन्यमय आत्मा के अनुभव के द्वारा अनुभव के काल में स्वयं ही विज्ञान घन होने से श्रुत ज्ञानात्मक समस्त अंतर जल्प रूप तथा बहिर जल्प रूप विकल्पों की भूमिका से पार को प्राप्त हो गए हैं, उसका उल्लंघन कर गए हैं। दूसरा पॉइंट, अब तीसरा झगड़े वाला। जिस तरह केवल ज्ञानी श्रुत ज्ञान की भूमिका से अतिक्रांतता के कारण समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हो गए हैं, किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते, उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी अनुभव के काल में स्वयं विज्ञानवान होने से समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हो गए हैं, इसलिए नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते। इस प्रकार उपरोक्त तीनों बोलों द्वारा सम्यक दृष्टि के अनुभव की प्रक्रिया को भगवान केवली के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का उदाहरण देकर समझाया गया है। उक्त बोलों में केवली व श्रुत ज्ञानी को समान बताया है। केवली भगवान को श्रुत ज्ञान नहीं है, इस कारण उनके नए नहीं है, मात्र वे श्रुत ज्ञान के स्वरूप को जानते हैं ही हैं। उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी को भी आत्मानुभव के काल में व्यवहार निश्चय का पक्ष छूट गया है, इस कारण वह भी अनुभव के काल में नए पक्ष के स्वरूप के केवल जानता ही स्वरूप को केवल जानता ही है, उसे भी उस समय नयों का विकल्प नहीं रहता। केवली भगवान तो सदा के लिए पूर्ण विज्ञान घन हो गए हैं, पर सम्यक दृष्टि केवल अनुभव के काल में ही विज्ञान घन हुआ है, क्योंकि अनुभव के काल के सिवाय सम्यक दृष्टि को नाना प्रकार के विकल्प उठते ही है, इसलिए केवल अनुभव के काल में ही वह विज्ञान घन हुआ है यह कहा है। यह बात धर्म की प्रारंभिक भूमिका की है। चौथे अनुष्ठान वर्ती सम्यक दृष्टि की ही बात चल रही है। मैं शुद्ध हूं ऐसा जो अंदर विकल्प उठता है वह अंतर जल्प है। अब मैं अशुद्ध हूं वाला नहीं, ये तो मैं शुद्ध हूं तो निश्चय में वाला विकल्प है ना, और बाहर जो वाणी निकलती है वह बहिर जल्प है। श्रुत ज्ञानी अनुभव के काल में समस्त अंतर जल्प और बहिर जल्प के विकल्पों को लांग चुका है। अहो अमृतचंद्राचार्य देव ने श्रुत ज्ञानी आत्मानुभवी जीव को केवल ज्ञानी से तुलना करके समझाया है, गजब काम किया है। जिसमें राग का अंश भी नहीं है, ऐसे शुद्ध चैतन्यमय आत्मा का अनुभव करने वाले को यहाँ पहले परमात्मा कहा, फिर उसके ज्ञान गुण की मुख्य करके ज्ञानात्मा कहा, फिर राग से भेद ज्ञान करा के उसे ही प्रत्येक ज्योति कहा, तत्पश्चात उसे ही आत्मज्योति कहा, और अंत में उसी को अनुभूति मात्र समय सार कहा। पर्याय में बद्ध है, देव अपेक्षा अबद्ध है, ऐसा जो वस्तु स्वरूप है उसे तो अज्ञानी मानता नहीं है और एकांत से एक पक्ष को ही ग्रहण करता है। पर्याय में अशुद्धता है ऐसा व्यवहार नय का पक्ष है, और द्रव त्रिकाल शुद्ध है ऐसा निश्चय नय का पक्ष है। जो इनमें एक नय को तो माने और दूसरे को न माने वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। मैंने बद्ध को न माने तो भी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि हो गया ना, अशुद्ध को न माने। मैं त्रिकाल शुद्ध चैतन्य में आनंद कंद प्रभु हूं ऐसा तो जाने नहीं और वृतादि के शुभराग को ही मात ग्रहण करके संतुष्ट रहे तो वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। देखो बहुत लोगों की ऐसी मान्यता है, भैया कोई बातें करने से क्या होगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये लोग करते रहते तो कुछ है नहीं। अब उनकी दृष्टि में करना धरना ना मानो क्या है, हमने सारा जीवन इसमें लगाया तब भी वे कहते करते रहते तो है नहीं, और सारा जीवन विषय के साय में, क्यों सड़क पर खड़े थे रोडपति से करोड़पति हो गए उसमें लगाया और उसमें एक आध व्रत कर लिया, एक आध घंटा पूजा पाठ कर लिया, कभी यात्रा कर जाए थोड़ा दान वगैरह दे दिया तो उन्हें समझता हमने बहुत किया। अब क्या है इनमें कुछ करे तो वो अपने किया हुआ मानता है और इनमें नहीं करे तो किया हुआ नहीं मानता, उनको कौन समझा है। तथा आत्मा शुद्ध आनंद कंद प्रभु है ऐसा कहे, अब ये वो तो व्यवहारावासी था, अब ये निश्चयभाषी की बात चल रही है, परंतु पर्याय में जो रागादि है उन्हें स्वीकार नहीं करे तो वह निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि है, और दोनों पक्षों को तो ग्रहण करे और आत्मा को ग्रहण न करे तो वह विकल्पों के जाल में उजला हुआ अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ही है उभयाभाषी। और जैन होने की तो यह शर्त है, देखो क्या शर्त है जैन होने की, कि किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करे बल्कि दोनों नयों के द्वारा वस्तु को एहसास जानकर नए पक्ष को भी छोड़कर मात्र आत्म वस्तु को ही ग्रहण करे, ये जैन होने की शर्त है। बोले ऐसे जैनी कितने हैं, प्रयोजन बस एक नए को प्रधान करके उसे ग्रहण करे तो मिथ्या तो नहीं होगा, मात्र चारित्र भूमिका राग रहेगा। मैं शुद्ध अखंड विवेक आनंद स्वरूप हूं, ज्ञायक हूं, इस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए व्यवहार के पक्ष को गौण करके निश्चय के पक्ष को मुख्य करके उसे ग्रहण करे तो मिथ्या तो रहित चारित्र भूमि संबंधी राग रहता है, ठीक है। लेकिन वो ऐसा हुए तो सम्यक दृष्टि की भूमिका में, वो कोई निश्चयभाषी ऐसा करे तो नहीं है ना, अनुभव होने के बाद भी मैं शुद्ध हूं ऐसा प्रधान पने पक्ष रहे तो वह राग रूप चारित्र का दोष है, उसे ज्ञानी यथावत जानता है और उग्र पुरुषार्थ द्वारा स्वभाव का आश्रय करके उसे भी दूर करता है, है ना, तो उसे भी जानता है कि ये है। और जब नए पक्ष को छोड़कर वस्तु स्वरूप को केवल जानता ही है तब श्रुत ज्ञानी भी केवल ज्ञानी की तरह वीतराग जैसा ही होता है। देखो चौथे गुण स्नान वाला वीतराग तेरहवें गुण स्नान वाला जैसा ही है, क्यों कि इतना जो ढेर सारा राग है वो उसे यहां राग गिनते ही नहीं, श्रद्धा वाले राग कोई राग गिनते हैं, अब ये अपेक्षा है जिनवाणी में हम क्या करें। देखा और वो जो गाथा में ये लिखा केवली के समान श्रुत केवली भी, अब क्या कह रहे कोई टीकाकार है तो उसी को सिद्ध करेंगे ना, हैं के सिद्ध करेंगे, नहीं नहीं बहुत अंतर है बहुत अंतर है बहुत अंतर है बहुत अंतर है, क्यों यानी केवली के उदाहरण से उन्होंने ये बात सिद्ध की है? अभी नहीं नहीं सब वो भी बताते जाओ वो भी बताते जाओ, अरे वो आए पूरा समय सार आदि अंत पढ़ो ना, अब इसी गाथा में सब बता देंगे तो उस गाथा में क्या करेंगे, जब उसका प्रकरण आएगा तब क्या करेंगे बोलो है? जो लोग स्वामी जी को एकांती होने का भ्रम पालते हैं उन्हें स्वामी जी के उक्त कथनों पर ध्यान देना चाहिए, और जो लोग उनके अन्नाई होते हुए भी एक पक्ष को ही सर्वथा ग्रहण करते हैं स्वीकार करना चाहते हैं उन्हें भी स्वामी जी के उक्त कथनों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और आगामी कलश में आत्मा के अनुभव की बात करेंगे, ये प्रकरण एक तरह से समाप्त होगा। 44वीं गाथा में आत्मा की अनुभूति कैसे होती है इस पर चर्चा की जाएगी, मेरे मन में है कम से कम ये 43वीं गाथा मैं परसों तक पूरी कर दूं, फिर ये 44वीं गाथा 144वीं देवलाली में चलाऊंगा उसके बाद।